श्री राधा कृष्ण ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। इस्कॉन पंजीकरण दिवस महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द श्री गुरु एंड गौरंगा। तो आप लोग जानते हैं आज कुछ विशेष दिन है। अच्छा लिख लिया। पंजीकरण का दिवस है। तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। प्रभुपाद लीलामृत में इस घटना का वर्णन है, तो उसी से ही हम सुनेंगे। तो सुनिए बड़े ध्यान से। प्रभुपाद हंस करके बोले, प्रभुपाद हंस करके बोले, विनोद पूर्ण भाव से प्रभुपाद बोले, हम अपने सोसाइटी को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। प्रभुपाद ने इस्कॉन नाम पहले दी, उसका जो पूरा जो विस्तृत नाम है वो ना बता करके प्रभुपाद ने क्या कहा, इस्कॉन, इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। और ये कह करके प्रभुपाद विनोद पूर्ण भाव से हंस पड़े। जब उन्होंने पहले पहल ये नाम गढ़ा था तो प्रभुपाद हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि हंसी की बात है, हंसी की बात है कि एक भी व्यक्ति नहीं है जो समर्पित हो। एक भी व्यक्ति नहीं जो समर्पित हो है? जो आते हैं प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं वे हिप्पी लोग हैं, हिप्पी हैं, चार नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। कोई माला पर जप करना तो बहुत दूर, उन्हीं से कह रहे हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद पहले हंसे, बाद में सब लोग हंसे। तो प्रभुपाद ने किसी को मौका नहीं दिया पहले हंसने का, पहले प्रभुपाद हंसे कि हंसी की बात है। जैसे कोई भिखारी सड़क में जो है भीख मांगता है और वो जो है राजा बनने के सपने देखे, प्रभुपाद की हालत ये है। प्रभुपाद को कोई नहीं जानता है। कुछ हिप्पी लोग हैं वो जो है आते हैं जुड़े हैं प्रभुपाद से और अपनी इच्छा से कभी आते कभी नहीं आते, कोई उनके ऊपर दबाव नहीं है। ऐसे लोगों से प्रभुपाद कह रहे हैं। तो ये हंसने की बात है ना, हंसने की बात है। प्रभुपाद को विश्वास है उनकी जन्म कुंडली में लिखा, उनकी जन्म कुंडली में लिखा था कि 70 वर्ष की अवस्था में ये जो है विश्व में 108 मंदिर स्थापित करेंगे। और अभी उस समय हो चुका है। प्रभुपाद कितने साल के हो गए? 1966 में 70 साल के हो गए, 70 साल के हो गए। तो जन्म कुंडली में लिखा है 70 साल में ये काम करेंगे। प्रभुपाद ने पहले से ये काम किया था लेकिन सफल नहीं हुए। झांसी में उन्होंने इस कार्य को प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि निश्चित था उनके जन्म के समय ही निश्चित था कि किस समय करेंगे, 70 साल की अवस्था में करेंगे। इसके अलावा प्रभुपाद को जानने की और भी कई जो है शक्तियाँ थीं कृष्ण की। कृष्ण ने भी उनको दृष्टि दी कि इस समय जो है मतलब कोई नहीं, एक भी मंदिर नहीं, एक भी मंदिर नहीं है। एक भी भक्त नहीं, कोई फुल टाइम डिवोटी नहीं, कोई गेरुआ कपड़े धारण करने वाला कोई नहीं है, कोई कंठी माला धारण करने वाला नहीं है, कोई तिलक लगाने वाला नहीं है, कोई माला पर जप करने वाला नहीं है। वह प्रभुपाद कहते हैं हम अपनी सोसाइटी को इस्कॉन के नाम से पुकारेंगे। इस्कॉन का मतलब क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी, अंतर्राष्ट्रीय। बाप रे। तो प्रभुपाद ने जो है ये कह करके प्रभुपाद विनोदपूर्ण भाव से हंसे। बोवरी पर रहते हुए उन्होंने अपने सोसाइटी के संस्थापन के संबंध में कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी जब बोवरी में थे। अभी तो कहाँ पर हैं? 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क में, 26 सेकंड एवेन्यू में प्रभुपाद। बोवरी तो और बुरी जगह थी, बोवरी तो बहुत गंदा अशुद्ध स्थान, वो सब हिप्पियों का अड्डा था। वहाँ पर सब जो है हिप्पी मांसाहार व्यभिचार जुआ नशा सब करते थे और पड़े रहते थे, इधर उधर पड़े रहते थे बोवरी में। वहाँ पर प्रभुपाद रहते थे तो उसी समय से उन्होंने कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी। किंतु कानूनी कार्यवाही आरंभ करने के पूर्व वे अपने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विषय में बातें करते रहते थे, और इसलिए ये नाम भारत को लिखे गए उनके पत्रों में और विलेज वॉयस पत्रिका में प्रकट हो चुका था। विलेज वॉयस पत्रिका ये न्यूयॉर्क की पत्रिका है, अब ये साप्ताहिक पत्रिका होगी, वीकली मैगजीन होगी विलेज वॉयस पत्रिका। तो उसमें छप चुका था कि प्रभुपाद जो है स्वामी जी, एक भारतीय स्वामी जो है चाहते हैं। क्या चाहते हैं? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते हैं। तो वो पत्रिका में, क्योंकि बहुत से जो आते थे उनको क्या बोलते हैं, जो समाचार लेते हैं ना, रिपोर्टर्स, तो उनको प्रभुपाद ने बताया तो उन्होंने छाप दिया, तो छप गया था। एक मित्र ने एक ऐसा नाम सुझाया जो पश्चिम के लोगों के लिए अधिक परिचित लगता है, वो नाम था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस। उसको हिंदी में क्या कहें, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ईश भावनामृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय ईश्वर भावनामृत संघ। तो सुझाया कि भाई पश्चिम के लोगों को ये ज़्यादा समझ में आएगा, कृष्ण क्या होता है वो जानते नहीं, कृष्ण क्या होता है। तो सुझाया, अच्छा सुझाया, सुझाव अच्छा था। किंतु प्रभुपाद का आग्रह कृष्ण कॉन्शसनेस पर था, कृष्ण कॉन्शसनेस। क्यों? क्योंकि कृष्ण के नाम में वो शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है कि कोई ना भी जाने तो भी ये नाम उसके कानों में पड़े या मुँह से निकले तो ये बहुत शुद्ध करता है। वो ईश्वर नाम है, वो शक्ति नहीं है, गॉड है कॉन्शसनेस, गॉड इस शब्द में इतनी शक्ति नहीं जितनी कृष्ण में। कोई ना भी समझे तो भी, है ना, जैसे गीता के श्लोक भागवतम के श्लोक पहले पढ़वाते हैं सबसे, बाद में अर्थ बताते हैं, क्योंकि इन श्लोकों में बड़ी शक्ति है, शुद्ध करते हैं। आप ना भी जाने तो भी, कृष्ण नाम भी जो है आप नहीं भी जानते तो भी ये शुद्ध करता है। इसलिए प्रभुपाद का आग्रह था कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नाम ही रखा जाए। जैसे रूप गोस्वामी ने कृष्ण के नाम की महिमा में एक श्लोक लिखा है, तुंडे तांडविनी रतिम मितुनयते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णार्वदेभ्य स्पृहाम चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कि यद्यमृत कृष्णेति वर्णद्वयी। उसमें ये बताएगी कि पता नहीं कितने कितने प्रकार के अमृतों को मिला करके ये दो अक्षर का कृष्ण नाम बनाया गया है। पता नहीं कितने कितने प्रकार के अमृतों से ये दो अक्षरों का नाम कृष्ण बना है। तुंडे तांडविनी रति मितनुते, तुंडे तांडविनी, तुंड माने मुख में, अगर ये नृत्य करे तो इच्छा होती है तुंडाव नीलभ्य, नील, एक नील मुख प्राप्त हो जाए। एक नील तो बहुत बड़ी संख्या होती है, करोड़, दस करोड़, अरब, दस अरब, खरब, दस खरब, नील, सौ खरब मुख प्राप्त करने की इच्छा होती है अगर मुख में ये नृत्य करे कृष्ण नाम, तो ऐसा लगता है कि सौ खरब मुख हो जाए। तुंडाव नीलभ्य कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णारुदेभ्य स्प्रिया, और कर्ण क्रोड कडम्बिनी, और कानों के क्षेत्र में अगर चला जाए ये कृष्ण नाम तो फिर स्प्रिया उत्पन्न होती है। ये नाम स्प्रिया उत्पन्न करता है अरबों की संख्या में कान हो। चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, और चित्त रूपी आंगन में अगर ये आ जाए, प्रवेश कर जाए तो सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, समस्त इंद्रियों के कार्यों पर विजय प्राप्त कर लेता है। समस्त इंद्रियों के कार्य बंद हो जाते हैं चित्त में, चित्त के आंगन में अगर आ जाए। नो जाने पता नहीं जनिता ये उत्पन्न हुआ है, बनाया गया है, कियत भीर अमृत है, कितने प्रकार के अमृतों से, नाम मालूम कितने प्रकार के अमृतों से ये बनाया गया है नाम, दो अक्षरों का नाम है कृष्ण, वर्णद्वयी, दो अक्षर का, दो अक्षर का नाम, बहुत छोटा सा नाम, कितना कितने प्रकार के अमृत इसमें भरे हुए हैं। तो प्रभुपाद तो जानते हैं सब चीजें, इसलिए उन्होंने ये नाम दिया। पहले लीग ऑफ डिवोटीज नाम दिया था, इस नाम में इतनी शक्ति नहीं थी, झांसी में प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज नाम दिया था। तो यहाँ प्रभुपाद आग्रह था कि कृष्ण कॉन्शियसनेस ही होना चाहिए, कृष्ण भावना में संग होना चाहिए, ईश्वर भावना में संग नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद का आग्रह था, कृष्ण कॉन्शियसनेस पर था, गॉड या ईश्वर नाम अस्पष्ट था, अस्पष्ट यानी स्पष्ट नहीं, स्पष्ट नहीं है। ईश्वर तो कोई कहते हैं भाई ईश्वर कोई निराकार चीज होती है, ईश्वर सबके ऊपर कंट्रोल है ईश्वर का, लेकिन ईश्वर जो है कोई शक्ति है, कोई निराकार है जिसको किसी ने नहीं देखा, जिसे कोई नहीं जान सकता, अज्ञात वस्तु है, कोई कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर को जो है व्यक्ति नहीं मानते। स्वाभाविक जो सामान्य लोग हैं ईश्वर के नाम पर जो है वो कल्पना करते हैं कि कोई शक्ति है कंट्रोलिंग पावर। तो ईश्वर नाम में जो है उतनी स्पष्टता नहीं है जितनी कृष्ण के नाम में स्पष्टता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ईश्वर नाम अस्पष्ट है, जबकि कृष्ण यथार्थ और वैज्ञानिक है, यथार्थ और वैज्ञानिक। अगर कृष्ण का नाम लेते हैं तो हर व्यक्ति सोचेगा कोई व्यक्ति है, ये कोई नाम तो है, इतना तो समझाता है कृष्ण कोई नाम तो है, कोई भी हो कृष्ण कोई नाम है, वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो इतना तो दिमाग में आता ही है। तो प्रभुपाद कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर है, आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर भावना मृत ये शब्द कमजोर है, है और कम व्यक्तिगत है, पर्सनल बहुत कम है, इसमें पर्सनालिटी का आभास बहुत कम होता है, व्यक्तित्व का आभास बहुत कम होता है ईश्वर नाम में। और यदि पाश्चात्य लोग नहीं जानते, प्रभुपाद कहते हैं कि पश्चिमी लोग नहीं जानते हैं कृष्ण को, कि कृष्ण ही ईश्वर है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ हर कस्बे हर गांव में उनकी महिमा को फैलाकर उन्हें बताएगा। तो लोग जो है जब इस नाम को सुनेंगे और उनके मन में विचार आएगा कि ये कौन है, कृष्ण कौन है, तो उनके अंदर जो इच्छा हुई जानने की कि कृष्ण कौन है, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा कदम है उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में। हाँ, उनका जो है एक बहुत बड़ा कदम वो उठा रहे हैं। अगर उनके अंदर इच्छा हुई कि कृष्ण कौन, कोई व्यक्ति है लेकिन कौन है, तो प्रभुपाद कहते हैं तो उनको पता चलेगा। किसी के अंदर इच्छा होती है जानने की कृष्ण कृष्ण कौन है, तो इतने से भी कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको अवसर देते हैं जानने का। तो ईश्वर से जो है वो लोग जानने की इच्छा नहीं करेंगे। ईश्वर अगर बोल दिया ठीक है, ईश्वर है, कोई शक्ति है, कोई निराकार है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत शब्द भक्ति वेदांत स्वामी का 16वीं सदी में रचित श्रील रूप गोस्वामी की पद्यावली के एक वाक्यांश कृष्ण भक्ति रस भाविता मति का अपना रूपांतर था, जिसका अर्थ है कृष्ण की भक्ति संपन्न करने के मधुर रस में निमग्न रहना। रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि गुतोपि लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भक्ति रस से भावित हो ऐसी मति खरीद लो अगर कहीं मिले तो, कहीं भी मिले तो खरीद लो। लेकिन मूल्य क्या है इसका, तत्र लौल्यम अभी एकलम मूल्यम, लौल्य माने लोभ, लोभ ही इसका मूल है। इसका मूल्य ये पैसे नहीं, 10 करोड़ 10 अरब ये सब नहीं है, इतने से नहीं मिलेगा। आपके अंदर लोभ हो, जितना लोभ है उतना ही मिलेगा। तो मूल्य क्या है, लोभ। लोभ तो मना किया जाता है, लोभ काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है, लेकिन ये लोभ अगर इसके लिए आपने लोभ किया तो मिल जाएगा। रूप गोस्वामी तो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, तो उसी को ही जो है प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसी से ही प्रभुपाद ने इसको बनाया, इस शब्द को। आगे, किंतु इस कौन के एक लाभ ना कमाने वाले कर्मुक्त धर्म के रूप में विधिवत पंजीयन के लिए धन और एक वकील की आवश्यकता थी। अगर इसका विधिवत पंजीयन करना है, कर्मुक्त धर्म के रूप में, कि कोई व्यक्ति अगर दान करेगा इसको तो उसको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, तो इसका अगर पंजीकरण करना है कर्मुक्त धर्म के रूप में, लाभ ना कमाने वाले, इसको उनका जो है संस्था ये नहीं है कि हमें कुछ और फायदा निकालना है, कृष्ण भावनामृत कार्यों में ही लगाना है पैसा, कोई और लाभ नहीं है। तो इसका पंजीयन करने के लिए धन की आवश्यकता है और वकील की आवश्यकता है, और आप जानते हैं कितना पैसा लगता है, वकील वकील करते हैं तो कितना पैसा लगता है ना। कार्ल इयरजेंस ने धार्मिक राजनीतिक सामाजिक कल्याणकारी संगठनों के निर्माण का कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था। कार्ल इयरजेंस ये कोई हिप्पी है, कार्ल, तो उसने जो है कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था कल्याणकारी संगठन के अनुभव, और जब वो बोवरी पर प्रभुपाद से मिला था तो उनकी सहायता करने को वो राजी हो गया था कि मैं आपकी सहायता करूंगा। उसने अपने वकील स्टीफन गोल्डस्मिथ से संपर्क किया था। स्टीफन गोल्डस्मिथ जो एक यहूदी नवयुवक था और जिसके पत्नी और दो बच्चे थे तथा पार्क एवेन्यू में जिसका कार्यालय था आध्यात्मिक आंदोलनों में रुचि रखता था। जब कारण ने प्रसिद्ध प्रभुपाद की योजनाओं के बारे में बताया तो वो तत्काल एक भारतीय स्वामी के लिए एक धार्मिक संस्था स्थापित करने के विचार से आकर्षित हुआ। अभी तक जो स्टीफन गोल्डस्मिथ था तो उसने बहुत सी धार्मिक संस्थाओं का पंजीयन किया, लेकिन वो सब पश्चिमी धार्मिक संस्थाएं थी। लेकिन अभी पहली बार उसको पता चला कि जो है कोई भारतीय स्वामी करना चाहते हैं इस कार्यक्रम, तो उसको विशेष आकर्षण हुआ। वो 26 सेकंड एवेन्यू में प्रभुपाद से मिला और दोनों ने संस्था संस्थापन, कर मुक्ति, प्रभुपाद की आप प्रवासन स्थिति और कृष्ण भावनामृत के विषय में विचार विनिमय किया। गोल्डस्मिथ प्रभुपाद से कई बार मिला। एक बार वो अपने बच्चों को साथ लाया जिन्हें स्वामी जी का द्वारा तैयार किया हुआ सूप बहुत पसंद आया। प्रभुपाद ने सूप पिलाया तो बच्चों को बहुत पसंद आया। वो उनकी शाम की कक्षाओं में आने लगा जहाँ वो श्रोता मंडली में प्रायः अकेला गैर हिप्पी सदस्य होता था। अकेले गैर हिप्पी, बाकी जितने थे सब हिप्पी थे। शाम की कक्षा में अकेले वो थे गैर हिप्पी। एक शाम को सारी कानूनी कार्यवाही पूरी कर लेने और निगमीकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार होकर गोल्डस्मिथ नई सोसाइटी के न्यासियों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद के व्याख्यान और कीर्तन में आया। अब ये आज की घटना है, आज के शाम की घटना है कि वो पूरी तैयारी करके आया है ना। और प्रभुपाद और गोल्डस्मिथ के बीच में जो बातें हुई वो किसी को पता नहीं है, और अगर पता होती तो हो सकता कि वो लोग फिर आते ही नहीं। जो गीता क्लास में आते हैं वो आते ही नहीं। प्रभुपाद जो है बहुत चालाक थे, तो प्रभुपाद ने गीता क्लास के समय ही इस कार्य को जो है मतलब आगे बढ़ाया। अब जुलाई 11 प्रभुपाद व्याख्यान दे रहे हैं। गोल्डस्मिथ पतलून कमीज और टाई पहने हुए दरवाजे के निकट फर्श पर बैठा हुआ पड़ोस में होने वाले शोरगुल से विचलित ना होता हुआ ध्यानपूर्वक व्याख्यान सुन रहा है। प्रभुपाद समझाते रहे हैं कि विद्वान लोग किस तरह भगवद गीता की अभक्तिपूर्ण व्याख्याओं द्वारा अबोध जनता को बहकाया करते हैं, और अब वकील की सामान्य उपस्थिति के स्वीकृति स्वरूप और मानव गोल्डस्मिथ का ध्यान और अच्छी तरह आकर्षित करने हेतु वे व्याख्यान के विषय के मध्य उसका परिचय प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद परिचय देते हैं वकील का। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दूंगा कि चीजों की गलत व्याख्या किस तरह से की जाती है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे अध्यक्ष मिस्टर गोल्डस्मिथ जानते हैं कि विशेषज्ञ वकील अपने व्याख्याओं द्वारा किस तरह कई चीजें कर सकते हैं। जब मैं कलकत्ता में था तो सरकार ने किराया संबंधी एक कानून बनाया और एक विशेषज्ञ वकील ने अपनी व्याख्या द्वारा उसका पूरा अर्थ ही बदल दिया। कानून बनाया सरकार ने, देखो इस कानून का अर्थ निकाल दिया दूसरा कि इसका तो यही अर्थ है, तो फिर सरकार को फिर से नया कानून बनाना पड़ा, शब्द बदलने पड़े। उसी तरह से मोतीलाल नेहरू के बारे में बताया जाता है, वो भी जो है लंदन में थे, बहुत बड़े वकील थे, तो उस समय जो है किसी को जो है अगर फांसी दी जाती थी तो ये नियम था ही शुड बी हैंग्ड, मतलब उसको फांसी में चढ़ा दिया जाए। तो वो जिसकी फांसी होने वाली थी वो मोतीलाल नेहरू के पास आया। आप जानते जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू के पास आया। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है तो मैं तुमको बचाऊंगा। तो उस समय जो है जब उसको फांसी में चढ़ाया गया तो उन्होंने कहा कि अब इसको तुरंत उतारो, इसको तुरंत उतारो, क्योंकि कहा गया है ही शुड बी हैंग्ड, तो उसको लटका दिया फांसी में, अब इसको उतारो, तुरंत उतारो। फिर सरकार को जो है नया कानून बनाना पड़ा, ही शुड बी हैंग टिल डेथ, कि जब तक मर ना जाए तब तक इसको फांसी में लटकाया जाए। ये उस व्यक्ति को बचा लिया उन्होंने। तो वकीलों में ऐसी जो है शक्ति होती है कि वे अर्थ बदल देते हैं। तो एक व्यक्ति को उन्होंने बचा लिया है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कलकत्ता में भी सरकार ने जो किराए का कानून बनाया तो व्याख्या द्वारा बदल दिया, सरकार को फिर से नया कानून बनाना पड़ा, क्योंकि इस वकील की व्याख्या द्वारा सरकार के आशय पर पानी फिर गया था। तो उसी प्रकार से गीता की व्याख्या भी जो अभक्त लोग करते हैं तो अपनी बुद्धि लगाते हैं अर्थ को बदलने में, अर्थ को बदलने में बुद्धि लगाते हैं, और कृष्ण की शरण ना लेकर के हमें निराकार की शरण लेना है, वो कुछ इस तरह के अर्थ निकालते हैं, निराकारवादी हैं। तो कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, एक निराकार वस्तु है, इस तरह की व्याख्याएं करते हैं। तो उनकी जो बुद्धि है वो इस कार्य में लगी होती है कि कैसे अर्थ को बदला जाए ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वकीलों में जो है ये जो होता है योग्यता होती है उसका इस तरह से दुरुपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से जो मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, गीता की टीकाएं लिखते हैं और जनता को बहकाते हैं कि गीता ने ये लिखा, गीता का ये अर्थ है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं, अतः हम यहाँ कृष्ण के उद्देश्य को जिसके लिए गीता का निर्माण हुआ था नष्ट करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, कि कृष्ण जो है कुछ कहना चाहते हैं हम उसको बदल करके दूसरी बातें बताएं, हम इसलिए नहीं इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अनधिकृत व्यक्ति कृष्ण के उद्देश्य को विफल करने में लगे हैं, अनऑथोराइज्ड लोग हैं जो कृष्ण की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। तो वो अच्छा मिस्टर गोल्डस्मिथ, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। देखो प्रभुपाद का जो है कितना अच्छा तरीका है, सब तैयारी होकर के आए हैं, सब पेपर वेपर सब, और प्रभुपाद कहते हैं मिस्टर गोल्डस्मिथ आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री गोल्डस्मिथ खड़े होते हैं और वहाँ एकत्रित लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए एक संक्षिप्त घोषणा करते हैं जिसमें स्वामी जी के नए धार्मिक आंदोलन के निगमन के दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ताओं की मांग करते हैं कि भाई हमको कुछ हस्ताक्षर चाहिए। जो लोग बिल्कुल समर्पित नहीं हैं आते हैं प्रभुपाद से मिलने के लिए आते हैं है? लेकिन कोई भी जो है ऐसा नहीं है जिसने कुछ नियम बनाया हो पक्का है? तो हस्ताक्षर की मांग करते हैं, भाई हस्ताक्षर चाहिए मुझे, स्वामी जी जो है एक संस्था बना रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले ये लोग यहाँ उपस्थित हैं आप इनके पते भी ले लो। प्रभुपाद ने खुद ही कहा देखो कितना अच्छा ड्रामा है, ये लोग यहाँ उपस्थित हैं आप इनके पते भी ले लो। तो श्री गोल्डस्मिथ बोले हाँ मैं अभी ले सकता हूँ, हाँ मैं ले सकता हूँ। तो जो बैठे हुए हैं उन्हें पहले से कुछ पता नहीं था कि क्या चक्कर है। प्रभुपाद हाँ आप ले सकते हैं, बिल तुम अपना पता दे सकते हो, रेफल तुम अपना दे सकते हो, डॉन राय मिस्टर ग्रीन सबके नाम दे दो अपने पते दे दो। बैठक जो है समाप्त होती है, न्यासियों के रूप में हस्ताक्षर के लिए जिनके नाम पुकारे गए थे वे छोटे स्टोर फ्रंट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं लाइन में। न्यासी मतलब ट्रस्टी, ट्रस्टी के रूप में। और वकील ने अपनी पतली सी अटैची से जो पन्ने निकाले हैं उनको सरसरी निगाह से देखने और यथा निर्देश उस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतीक्षा करते हैं, फिर भी उनमें से एक भी व्यक्ति कृष्ण भावना के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, कोई समर्पित नहीं है कि भाई आगे मैं कुछ करूँगा, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ले हस्ताक्षर लेना है चलो दे दो हस्ताक्षर है? मिस्टर गोल्डस्मिथ को यथा आवश्यक संख्या में हस्ताक्षर मिल जाते हैं, हस्ताक्षरकर्ता मिल जाते हैं। फिर थोड़े से ऐसे लोग हैं जो स्वामी जी से सहानुभूति रखते हैं, उनकी सहायता के लिए उनके मन में पर्याप्त सम्मान है। सर्वप्रथम न्यासी जो संघ का अगला वार्षिक अधिवेशन होने तक एक वर्ष के लिए पदाधिकारी रहेंगे, माइकल ग्रांड, जो दस्तावेज पढ़े बिना ही अपने हस्ताक्षर कर देता है और पता लिख देता है, माइक की मित्र जेन, मतलब गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड भी है उनकी जेन, और जेम्स ग्रीन है, इनमें से किसी का भी इरादा धार्मिक संघ के ट्रस्टी के रूप में किसी भी औपचारिक दायित्व को गंभीरतापूर्वक हाथ में लेना नहीं है। कोई जिम्मेदारी लेने के विचार में नहीं है हस्ताक्षर करने के लिए। यहाँ ऐसा माहौल बन गया ना कि हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए। किंतु स्वामी जी के वर्धमान संघ को कानूनी अस्तित्व में लाने के लिए अपने हस्ताक्षर से उनकी सहायता करने में उन्हें प्रसन्नता है। अच्छा है, खाली हस्ताक्षर करने से अगर स्वामी जी का काम आगे बढ़े तो अच्छा है, लेकिन हमें कुछ करना नहीं है, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है, हस्ताक्षर ही तो करना है। प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई आप लोगों को ये बंधना पड़ेगा, इस नियम से बंधना पड़ेगा, ये व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं है, किसी को प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि नहीं ये करना पड़ेगा तब हस्ताक्षर करोगे, तो कोई नहीं हस्ताक्षर करता। कानून के अनुसार न्यासियों का दूसरा दल दूसरे साल के लिए कार्यभार संभालेगा, दूसरे साल के भी ट्रस्टी पाल गार्डिनर राय और डॉन। तीसरे वर्ष के न्यासी हैं कार्ल एयर जेंस, बिल एप्स्टीन और रेफल। तीन तीन ट्रस्टी जो है तीन साल के लिए बना दिए, हस्ताक्षर कर लिए, टोटल कितने हो गए, नौ पर्याप्त है। उनमें से कोई भी ठीक ठीक नहीं जानता था कि आधे दर्जन कानूनी आकार के में टंकित पृष्ठों का आशय क्या है। आधे दर्जन में 6 पेज जिनमें जो है कानूनी जो है वो टाइपिंग हुई है, सिवाय इसके कि स्वामी जी एक सोसाइटी बना रहे हैं। क्यों? अब वो सोच रहे क्यों, कर से छूट के लिए कि कोई दान देगा स्वामी जी को तो उसको कर नहीं देना पड़ेगा। यदि कोई बड़ी धनराशि अनुदान में दे और अन्य लाभों के लिए जो एक पंजीकृत धार्मिक सोसाइटी प्राप्त कर सके, किंतु वर्तमान परिस्थिति में यह उद्देश्य ना तो बहुत महत्वपूर्ण है और ना प्रासंगिक। अनुदान देने कौन जा रहा है, कौन बड़ा दान देने जा रहा है, ये हिप्पी लोग क्या देंगे कुछ है? ये सब सड़क में रहने वाले, सड़क में सोने वाले हिप्पी हैं, ये क्या देंगे मिस्टर गोल्ड स्मिथ के अतिरिक्त किसके पास इतना धन है, ये वकील ही हैं, अगर देंगे तो यही देंगे और क्या, कुछ अगर बड़ा दान देंगे तो यही देंगे, बाकी सब हिप्पी लोग हैं है? खाने सोने वाले अपना घर छोड़ करके सड़कों में पड़े रहते हैं। किंतु प्रभुपाद अपनी योजना भविष्य के लिए बना रहे हैं और उनकी योजना कर्म छूट से कहीं अधिक के लिए। वे अपने आध्यात्मिक पूर्वजों की सेवा करने और शास्त्रों की उस भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि एक आध्यात्मिक आंदोलन कलयुग में 10,000 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। अत्यंत विस्तार वाले कलयुग में जो 43,20,000 साल तक रहेगा, 1960 ईस्वी का दशक एक क्षुद्र क्षण के समान है। वेदों में वर्णन है कि विश्व का कालचक्र 4 युगों में संचरण करता है और कलयुग सबसे निकृष्ट समय है, इसमें मनुष्यों के सभी आध्यात्मिक गुणों में ह्रास होता जाता है, दिन प्रतिदिन गुण घटते जाते हैं और दोष बढ़ते जाते हैं दिन प्रतिदिन कलयुग में, जबकि मानवता सभी मानवीय सदाचारों से वंचित होकर अंततः पशुता की सभ्यता की कोटि में नहीं पहुंच जाती। कलयुग के अंत में क्या होगा, सब जानवर की तरह हो जाएंगे पूरे। परंतु वैदिक साहित्य आध्यात्मिक जीवन के एक स्वर्ण युग की भविष्यवाणी करता है, इस कलयुग में आध्यात्मिक जीवन का स्वर्ण युग कितने समय का, 10,000 साल के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से आरंभ होकर 10,000 वर्षों तक रहेगा। 1486 चैतन्य महाप्रभु का जन्म, 1486 से 10,000 साल तक कितना हुआ? 10,000 और 1,000, 11,486। सन 11,486 तक जो है क्या होगा? स्वर्ण युग। ये ऐसा काल प्रवाह होगा जो कलयुग की धारा के विपरीत बहेगा। कलयुग की धारा नरक की ओर जा रही है और इसकी धारा वैकुंठ की ओर। 10,000 साल तक काल का प्रवाह क्या होगा? उल्टा होगा। कलयुग के प्रवाह से उल्टी दिशा में चलेगा ये प्रवाह। एक ऐसी दृष्टि लिए हुए जो कल्पांत उसके परे तक पहुंचती है, फिर भी अपने दो पैर सेकेंड एवेन्यू की धरती पर दृढ़ता से जमाए हुए प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का समारंभ कर दिया है। उनके ऊपर बहुत से व्यवहारिक उत्तरदायित्व हैं। किराए का भुगतान, अभी तो उनके ऊपर बड़ी भार है कि ये जो बिल्डिंग ली है किराया, प्रभुपाद के ऊपर ही भार है किराए देने का। अपने संघ का पंजीयन, वर्धमान विश्वव्यापी भक्त मंडली का मार्ग प्रशस्त करना आदि। तो भी वे नहीं मानते कि उनके लघु समारंभ से उनके दिव्य उद्देश्य का महत्तर क्षेत्र किसी तरह सीमित होता है। वे जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण पर अवलंबित है और कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या करते हैं? राई से पर्वत करें और पर्वत को राई करें। राई समझते हैं? छोटा सा है, है? साहब ते सब होता है, बंदे ते कछु नाही। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माए। तो कृष्ण जो है अभी छोटा सा आरंभ है आंदोलन का, तो ये क्या बन जाएगा? राई से पर्वत बन जाएगा। वे जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण पर अवलंबित है, इसलिए वे सफल होते हैं या विफल ये परमेश्वर पर निर्भर है, उन्हें केवल प्रयत्न करना है। इस कौन के निगमन की धाराओं में जो उद्देश्य उल्लिखित हैं वे प्रभुपाद की विचारधारा को उद्घाटित करते हैं। इसके 7 बिंदु उन बिंदुओं के समान हैं जो 1953 ईस्वी में झांसी भारत में गठित लीग ऑफ डिवोटीज की नियमावली में दिए गए थे। वो प्रयास विफल रहा था, फिर भी उसके उद्देश्य वही रहे। 7 उद्देश्य। पहला, संपूर्ण मानव समाज में सुव्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना और सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक जीवन की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना, जिससे जीवन मूल्यों में असंतुलन रोका जा सके और विश्व में वास्तविक एकता और शांति की स्थापना हो सके। दूसरा, कृष्ण भावना का प्रसार करना, जैसा कि भगवद गीता और श्रीमद भागवत में उद्घाटित है। तीसरा, संघ के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ना, उन्हें आदि सत्ता कृष्ण के निकटतर ले जाना और इस प्रकार सदस्यों और संपूर्ण मानवता में इस धारणा का विकास करना कि प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर कृष्ण के गुणों का भिन्न अंश है। कितने हो गए? नहीं गिना, कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में उद्घाटित संकीर्तन आंदोलन या भगवान के पावन नाम के सामूहिक गायन की शिक्षा देना और उसे प्रोत्साहित करना है। कितने हो गए? 4। पांचवा, सदस्यों और संपूर्ण मानव समाज के लिए श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का निर्माण करना है। कितने हो गए? 6, 5। छठवां, सरलतर और अधिक सहज जीवन की शिक्षा देने के उद्देश्य से सदस्यों को एक दूसरे के अधिक निकट लाना। 6 हो गए। 7वां, उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि को दृष्टि में रखते हुए पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों तथा अन्य रचनाओं का प्रकाशन और वितरण करना। इस कौन के अधिकृत सदस्यों ने संघ के उद्देश्यों के संबंध में जो भी सोचा हो, प्रभुपाद ने तात्कालिक यथार्थताओं के रूप में देखा। जैसा कि श्री रूबिन ने, जो एक उपमार्ग कंडक्टर थे और 1965 ईस्वी में प्रभुपाद से मैनहट्टन के पार्क में एक बेंच पर मिले थे, लिखा था, वे ये जानते प्रतीत होते थे कि उनके पास अनेक अनेक मंदिर होंगे जो भक्तों से भरे होंगे। मंदिर और ग्रंथ अनेक हैं, उन्होंने कहा, उनका अस्तित्व है, वे विद्यमान है, किंतु समय उन्हें अलग रख रहा है। प्रभुपाद ने 1965 में ही कहा था। चार्टर में उल्लिखित पहला उद्देश्य प्रचार था, प्रचार एक ऐसा शब्द था जिसका प्रयोग प्रभुपाद बार बार करते थे। उनके लिए प्रचार शब्द का महत्व केवल धर्मोपदेश से कहीं अधिक था। प्रचार का अर्थ था परमेश्वर के नाम पर भव्य निस्वार्थपूर्ण साहसी अभियान। चैतन्य महाप्रभु ने समस्त दक्षिण भारत में घूमकर प्रचार किया था। उन्होंने हजारों लोगों को अपने साथ भाव से संकीर्तन और नृत्य के लिए प्रेरित किया था। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथ रथ में खड़े होकर भगवद गीता का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने प्रचार किया था, ईसा मसीह ने प्रचार किया था और सभी विशुद्ध भक्त प्रचार करते हैं। साहसी साहसपूर्ण अभियान है प्रचार। इस कौन के प्रचार से उस वस्तु की उपलब्धि होगी जिसे लीग ऑफ नेशंस तथा यूनाइटेड नेशंस ऐसी संस्थाएं नहीं प्राप्त कर सकी हैं। है? मतलब विश्व में शांति की स्थापना वो नहीं कर पाए और युद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन इससे उपलब्धि होगी। अर्थात विश्व में वास्तविक एकता और शांति, इस कौन के कार्यकर्ता इस संसार में शांति की स्थापना करेंगे। जो भौतिकता और कलह से घोर रूप में पीड़ित हैं, वे व्यवस्थित रूप में आध्यात्मिक ज्ञान का संप्रदाय निरपेक्ष भगवत विज्ञान के ज्ञान का प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं था कि जुलाई 1966 ईस्वी में एक नए धर्म का जन्म हो रहा था, बल्कि भगवान के शाश्वत प्रचार के पौधे को जो संकीर्तन नाम से विख्यात है पूर्व से पश्चिम में प्रतिरोपित किया जा रहा था। पौधा पूर्व से लाए और प्रभुपाद ने पश्चिम में इसको जमा दिया। सोसाइटी के सदस्य इकट्ठे होंगे और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को सुनकर एवं हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके उन्हें अनुभूति होगी कि उनमें से प्रत्येक चेतन जीवात्मा जो परमेश्वर कृष्ण से शाश्वत रूप से संबद्ध है। तब इसका प्रचार समस्त मानव समाज में करेंगे, विशेषकर भगवान के पावन नाम के संकीर्तन के माध्यम से। ये एक एक बिंदु को समझाया जा रहा है। ये तीसरा बिंदु, फिर चौथा बिंदु, इस कौन श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं के पवित्र धाम का भी निर्माण करेगा। क्या ये स्टोर फ्रंट से परे की बात थी? अभी स्टोर फ्रंट है। हाँ, निस्संदेह प्रभुपाद कभी कोई छोटी बात नहीं सोचते थे। वे ये जानते थे कि वे भक्तों से भरे मंदिरों का निर्माण करेंगे, वो है दिव्य धाम, भक्तों से भरे मंदिर। वे चाहते थे कि इस्कॉन एक सरल और अधिक सहज जीवन पद्धति का प्रदर्शन करे। अगला पॉइंट है, प्रभुपाद के विचार में भारत के गांवों का जीवन था जहां लोग ठीक वैसा ही जीवन बिताते थे जैसा कृष्ण ने बिताया था। ऐसी जीवन पद्धति कृष्ण भावना के विकास के सर्वथा अनुकूल थी, वही सरल सहज जीवन। और इन सभी छह उद्देश्यों की पूर्ति सातवें से होगी। इस्कॉन साहित्य प्रकाशित करेगा, उसका वितरण करेगा। ये एक विशेष आदेश था जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिला प्रभुपाद को दिया था। उन्होंने 1932 ईस्वी में वृंदावन में राधा कुंड पर एक दिन उनसे विशेष रूप से कहा था, यदि तुम्हें कभी भी कोई धन मिले तो उससे पुस्तकें प्रकाशित करना। निश्चय ही हस्ताक्षरकर्ताओं में से किसी को भी स्वामी जी के स्वप्नों का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, तो भी ये सातों देश न्यूयॉर्क के कतिपय सरकारी अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए आस्तिकतापूर्ण काव्योक्तियों की अवतारणा मात्र नहीं थे। प्रभुपाद चार्टर की प्रत्येक धारा को कार्य रूप में परिणत करना चाहते थे। ये सही है कि समय वे नितांत सीमित परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। पूजा का मुख्य स्थान 26 सेकेंड एवेन्यू न्यूयॉर्क के प्रदेश जिले और नगर में से था। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ का एकमात्र मुख्यालय था। पूरी दुनिया में केवल एक ही हेडक्वार्टर। फिर भी प्रभुपाद इस बात पर बल देकर कहते कि वे 26 सेकेंड एवेन्यू में नहीं रह रहे हैं, उनकी दृष्टि लोकातीत थी। उनके गुरु महाराज आध्यात्मिक ध्यान के परंपरागत पवित्र स्थानों से निकलकर कलकत्ता, बंबई और दिल्ली जैसे स्थानों में प्रचार करने गए थे। प्रभुपाद कहते थे कि तब भी उनके गुरु महाराज इन नगरों में से किसी में कभी नहीं रहे, वरन उनका निवास सदैव वैकुंठ में था, अर्थात आध्यात्मिक लोक में, क्योंकि वे सदा भक्ति में लीन रहते थे। उसी तरह 26 सेकेंड एवेन्यू स्थित पूजा स्थल न्यूयॉर्क का एक स्टोर फ्रंट नहीं था जो कभी अजायबी वस्तुओं की दुकान रह चुका था, मैच लेस गिफ्ट, और अब भी लोकातीत स्वर्ग थे, समग्र मानव समाज वहाँ आ सकता था और जाति अथवा धर्म के भेदभाव बिना पूरा संसार वहाँ शरण पा सकता था। एक ऐसा घर बनाया है जिसे पूरा संसार रह सकता है। यद्यपि वो बहुत सादा छोटा और विपन्न था, किंतु प्रभुपाद की दृष्टि में वो कृष्ण के व्यक्तित्व को समर्पित दिव्य लीलाओं का पवित्र धाम था। वो विश्व का मुख्यालय था, प्रकाशन गृह था, पवित्र तीर्थ स्थल था और ऐसा केंद्र था जहाँ से भक्तों की सेना निकलकर संसार की सभी सड़कों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेगी। समस्त ब्रह्मांड अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जो स्थापित हो रहा था कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकेगा। तो इतना जो है ये प्रकरण आज की लीला से संबंधित है। ठीक है, तो कोई प्रश्न है या कोई चर्चा आप लोगों की ओर से, या मैं प्रश्न करूँ? प्रभुपाद का साहस था, इसे पता चलता है प्रभुपाद कितने साहसी हैं, है? और बहुत चतुर भी हैं, है? यही कृष्ण भक्त से बड़ चतुर, बहुत चतुर हैं, है ना? तो पहले से किसी को नहीं बताई अपनी योजना, है ना? हाँ जी, आपका प्रश्न। चेता प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, चित्त के आंगन में जब ये प्रवेश कर जाए तो समस्त इंद्रियों के कार्यों को ये जीत लेता है। विजयते, समस्त इंद्रियों के कार्यों को जीत लेता है, मतलब समस्त इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं, है? अभी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर के विषयों को ढूंढ रही हैं, ये समस्त इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। उस समय जो हमारी इंद्रियां हैं शुद्ध हो जाती हैं, और शुद्ध इंद्रियां जो है वो सुनती हैं तो कृष्ण के लीलाएं, कृष्ण के संदेश को सुनती हैं, ये कान सुनते हैं, जो आंखें भी देखना चाहती हैं तो भगवान के रूप को देखना चाहती हैं, है ना? मुख भी बोलना चाहता है तो कृष्ण का गुणगान ही बोलना चाहता है, तो ये सभी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लग जाती हैं। ये मतलब ये कृष्ण के नाम के जो है अधीन हो जाती हैं। कृष्ण जो है, कृष्ण का नाम जो है जीत लेता है इन इंद्रियों, यानी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लग जाएं, हमारी सभी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लग जाएं, ये मतलब है। कृष्ण भावना मृत का अर्थ यही है कि अपनी सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। सवे मनहा कृष्ण पधारे विंदेवर पचान से वैकुंठ गुणानुवर्णने, अम्बरीश महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया था, अपनी वाणी को कृष्ण के गुणों का वर्णन करने में लगाया। बचान से सवे मना कृष्ण पधारे विंदेवर, अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाया। बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरेर मंदिर मार्जना जसु, हाथों को लगाया हरि के मंदिर मार्जन आदि कार्यों में। श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदये, कानों को लगाया कृष्ण की सत्कथाओं के उदय में, है ना? मुकुंद लिंगालय दर्शने दसो, आँखों को लगाया भगवान के जो मंदिर है, भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करने में। तद्वृत्त गात्र सिंग संगमम, और अपना अंग संग लगाया उनके भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में। इस तरह से सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया। ठीक है, और कोई? प्रभुपाद ने जो वकील का उदाहरण दिया है, वो किस तरह का उदाहरण था, इसको कौन समझाएगा? एक वकील का उदाहरण दिया कि गीता की व्याख्या जो लोग करते हैं, तो एक वकील का उदाहरण दिया कि गीता की व्याख्या कैसे गलत करते हैं, कौन बताएगा? प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? कलकत्ता, कलकत्ता में एक वकील था, सरकार ने कोई कानून पास किया था, किसके बारे में? किराए के संबंध में, उसने अर्थ बिल्कुल बदल दिया, कानून का अर्थ बिल्कुल बदल दिया, है ना। फिर मैंने भी उदाहरण दिया मोतीलाल नेहरू का, सरकार ने कानून बनाया था भाई किसी को फांसी पर चढ़ाना है, ही शुड बी हैंग्ड, उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने जो है उसका अर्थ बदल दिया, फांसी पर, आपने कहा फांसी पर चढ़ा दिया, ये कानून है, फांसी पर चढ़ा दिया, है ना, उतारो, तो सरकार को दोबारा कानून बनाना पड़ा, क्या मृत्यु पर्यंत फांसी पर चढ़ाया जाए, है ना। तो इसी तरह से गीता की जो व्याख्या है, जो निराकारवादी हैं उस तरह से करते हैं कि कृष्ण को ही निकाल देते हैं उसमें से, कृष्ण को शून्य बना देते हैं, कृष्ण को ही निकाल देते हैं, ठीक है। इस्कॉन पंजीकरण दिवस महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। पेज नंबर 507।